अध्याय 38 मनोरंजन। मसीहियों के पास आनंद प्राप्ति के कई स्रोत हैं। वे त्रुटि रहित यथार्थता से कह सकते हैं कि कौन कौन साधन शास्त्रोक्त एवं न्यायसंगत हैं। वे उन मनोरंजन साधनों से आनंदोपभोग कर सकते हैं जो मस्तिष्क को अशुद्ध नहीं करते अथवा आत्मा का पतन नहीं करते, जो नैराश्य उत्पन्न कर एक उदासीन प्रदान नहीं करते जिससे आत्मसम्मान पर धक्का पहुंचे और जीवन के उपयोगी मार्ग में बाधा उत्पन्न हो। यदि वे यीशु को अपने साथ लेकर प्रार्थना की भावना को कायम रख सकें तो वे बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भी मनोविनोद जिसके लिए आप विश्वास के साथ परमेश्वर से आशीष मांग सकते हैं भययुक्त नहीं है, पर वह मनोविनोद जो गुप्त प्रार्थना, प्रार्थना वेदी पर मनन अथवा प्रार्थना सभा में सहभागी होने के लिए व्यक्ति को अयोग्य बना देता है, सुरक्षापूर्ण नहीं पर भयपूर्ण है। हम उस श्रेणी में से हैं जो विश्वास करते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन के प्रत्येक दिवस में हम परमेश्वर की महिमा करें और कि हम केवल अपने मनोविनोद के हेतु तथा विलास प्रियता के लिए ही जीवित न रहें। हम यहाँ पर मनुष्यत्व का उपकार करने तथा समाज का आशीर्वाद बनाने के लिए हैं। यदि हम अपनी विचारधारा को उन नीची नालियों में बहने दें जिनमें बहुत केवल घमंड और मूर्खता के अन्वेषण करता है और विचारधारा को निरंकुश छोड़ दें, तो हम किस प्रकार अपनी जाति और पीढ़ी को लाभ पहुंचा सकेंगे? हम किस भांति अपने चहुं ओर स्थित समाज के लिए आशीर्वाद बन सकेंगे? हम निर्दोष होकर किसी मनोविनोद में संभागी नहीं हो सकते जो हमें विश्वस्त रूप से अपने सर्वसाधारण कर्तव्यों का पालन करने में अयोग्य ठहरा दे। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो स्वयं में उचित हैं किंतु शैतान के द्वारा असावधान जन के लिए जाल के रूप में बदल दी गई हैं। अन्य व्यवहारों की भांति मनोविनोद में भी आत्मसंयम की आवश्यकता है। प्रत्येक मनोविनोद के गुर पर भली भांति विचार करना चाहिए। प्रत्येक युवक स्वयं यह पूछे कि ये मनोविनोद उसके शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगा। क्या वो मेरे मस्तिष्क को ऐसा भ्रमित कर देगा कि मैं परमेश्वर को भूल जाऊं? क्या मैं उसकी महिमा को अपने सम्मुख से त्याग दूंगा? मनोरंजन के प्रति मनोवृत्ति। कई अस्वस्थ कल्पनापूर्ण व्यक्ति हैं जिनके लिए धर्म एक क्रूर शासक है जो मानो उन्हें एक लौह दंड से शासित कर रहा है। इस प्रकार के मनुष्य अपने पतन पर अविराम शोक प्रकट करते एवं अनुमानित बुराई पर कराहते रहते हैं। प्रेम उनके हृदय में वास नहीं करता। कपाल की सिकुड़न सदैव उनके मुखमंडल पर दृष्टिगोचर होती है। युवा के निर्दोष हास्य अथवा किसी अन्य की हंसी से अप्रसन्न हो जाते हैं। वे सर्व मनोविनोद को पाप समझकर सोचते हैं कि मस्तिष्क सदैव ही एक कठोर एवं निष्ठुर स्वर पर रखा जावे। ये एक चरम सीमा है। दूसरों का विचार है कि मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के हेतु सदैव नवीन मनोविनोद तथा परिवर्तन क्रीड़ा के अन्वेषण में निमग्न रहना चाहिए। वे उद्वेगों पर अवलंबित रहना सीख लेते हैं, अतएव बिना उत्तेजना के उनका जीवित रहना दूभर हो जाता है। ये सच्चे मसीही नहीं हैं। ऐसे लोग दूसरी चरम सीमा की ओर जाते हैं। मसीही धर्म के सच्चे सिद्धांत सबके समक्ष आनंद का उद्गम स्थान खोल देते हैं, जिनकी ऊंचाई, गहराई और लंबाई और चौड़ाई मापी नहीं जा सकती। ये मसीहियों का अहोभाग्य और कर्तव्य है कि वे शारीरिक और मानसिक शक्तियों को परमेश्वर की महिमा में उपयोग करने का ध्येय रखते हुए आत्मा को नवीन बनाने और शरीर को निर्दोष मनोरंजन द्वारा स्फूर्तिमय बनाने की खोज में लगे रहें। हमारे मनोरंजन महत्वहीन विलास के दृश्य न बने जो असंगत रूप धारण कर लेते हैं। हम उनका आयोजन इस प्रकार कर सकते हैं जिससे हमारा संबंध है, जो हमें अधिक सफलतापूर्वक उन कर्तव्यों का पालन करने के योग्य बना देते हैं जो हमारे ऊपर मसीही होने के फलस्वरूप सौंपे गए हैं। मुझे दर्शाया गया कि सब्बत मानने वाले एक जनसमूह के रूप में अपने विश्राम का विचार किए बिना निरंतर परिश्रम में लीन रहते हैं। मनोरंजन उनके लिए आवश्यक है जो शारीरिक श्रम में व्यस्त रहते हैं, अथवा उनके लिए अत्यावश्यक है जो विशेषकर मानसिक परिश्रम में लीन रहते हैं। ये उद्धार के लिए आवश्यक नहीं है और ना ही परमेश्वर की महिमा के लिए कि हम अविराम रूप में मानसिक श्रम करते रहें, चाहे वे धार्मिक विषयों से ही संबंधित क्यों ना हों।
वह समय जो शारीरिक अभ्यास में व्यय किया जाता है सो नष्ट नहीं होता।
शरीर के समस्त मंडल केंद्रों का एक निश्चित अभ्यास प्रत्येक मंडल के उत्तम कार्य के लिए अनिवार्य है। जब मस्तिष्क निरंतर कठोर परिश्रम करता है और शरीर रूपी जीवित कल के अन्य भाग निष्क्रिय रहते हैं, तब शारीरिक और मानसिक शक्ति को हानि होती है। शरीर रचना अपनी स्वस्थ आभा से वंचित कर दी जाती और मस्तिष्क अपनी नवीनता एवं स्फूर्ति को खो बैठता है, जिसके फलस्वरूप अधमुई उत्तेजना एक स्थूल स्थिति का आविर्भाव होता है। शयन और श्रम के निमित्त समय नियुक्त करने में सावधानी की आवश्यकता है। हमें विश्राम काल, मनोरंजन काल और मनन काल का ध्यान रखना चाहिए। संयम के सिद्धांतों को हमारे विचार जितना सीमित करते हैं उससे भी अधिक विस्तृत वे हैं। विद्याभ्यास करने वालों को विश्राम की आवश्यकता है। मस्तिष्क को सदा विचारों में ही व्यस्त नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मस्तिष्क रूपी कोमल कल शीघ्र घिस जाती है। शरीर और मस्तिष्क दोनों को अभ्यास की आवश्यकता है। मनोरंजन जिसका उपयोग धनी एवं दरिद्र दोनों कर सकते हैं। युवावस्था वृद्धावस्था की भांति शांत एवं गंभीर नहीं बनाई जा सकती और बालक पिता की भांति गंभीर। जब पापमय मनोविनोद का खंडन किया जाता है, जैसे किया भी जाना चाहिए, तो माता पिता शिक्षकों अथवा अभिभावकों को चाहिए कि वे युवकों के लिए इनके बदले निर्दोष मनोरंजन का प्रबंध करें, जो न उनके नैतिक विचारों को भ्रष्ट करें न उन पर अपना रंग चढ़ाए। युवकों को कठोर नियमों के बंधनों में न बांधिए, जिनसे वे अपने आप को दबे हुए समझकर उन्हें तोड़कर मूर्खता और विनाश के मार्ग की ओर अग्रसर हो जावें। शासन की बागडोर को दृढ़ता दयालुता से संभाले रहो और उनके मस्तिष्कों तथा ध्येयों का पथ प्रदर्शन तथा नियंत्रण ऐसी कोमलता बुद्धिमता तथा ऐसे प्रेम के साथ कीजिए कि वे समझ जाएं कि आप उनके हितैषी हैं। मनोरंजन कई प्रकार के होते हैं, जो मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए उपयोगी है। प्रदीप्त समझदार व्यक्ति खेल क्रीड़ा के अनेकों साधन उन स्रोतों से पाएगा जो न केवल निर्दोष वरन शिक्षाप्रद भी है। खुली हवा में मनोरंजन करने से प्रकृति में परमेश्वर के कार्यों पर चिंतन से एक उच्च कोटि का लाभ मिलेगा। जिस मनोरंजन से स्वयं ही को लाभ पहुंचे, उससे बालकों तथा युवकों को इतनी बड़ी आशीष नहीं मिलेगी जितनी उस मनोरंजन से मिलेगी जिससे दूसरों को लाभ पहुंचता है। परमेश्वर ने प्रत्येक के लिए ऐसे आनंद प्रदान किए हैं जिनका उपयोग धनी और दरिद्र दोनों कर सकते हैं। ऐसा आनंद जो विचारों को परिशुद्ध बनाने में और परस्वार्थी कार्यों में प्राप्त होता है। ऐसा आनंद जो सहानुभूति प्रदर्शित करने वाले शब्दों में तथा कृपामय कार्य करने में आता है। ऐसी सेवा करने वालों द्वारा मसीह का प्रकाश दुखियों के जीवन में अंधकार को दूर करने के हेतु चमकता है। इस संसार में हमारे करने के लिए बहुत ऐसी आवश्यक और उपयोगी बातें हैं जिनको करने से आनंद और मन बहलाव की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जब हम मस्तिष्क, अस्थि और मांसपेशी को परिश्रम से सोचने, योजना निर्माण करने के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं, तो इनको ठोसपन एवं बल प्राप्ति होगी, जिनके प्रशिक्षण द्वारा उनके मानसिक एवं शारीरिक अंगों की शक्ति का विकास होगा, जिसका अर्थ यह निकलेगा कि वे अपनी ईश्वर प्रदत्त योग्यताओं को व्यावहारिक रूप दे रहे हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो सकती है। शहर अथवा गांव में रहने वाले अनेकों परिवार संगठित होकर अपने उन व्यवसायों से अलग होकर जो उनके शरीर और मन को दबाते हैं, देहात भ्रमण के लिए निकलकर किसी झील के किनारे अथवा किसी कुंज या प्राकृतिक सौंदर्यमय दृश्य को निकल जावें। वे अपने साथ साधारण स्वास्थ्यप्रद भोजन, उत्तम फल और अनाज ले जावें और अपना भोजन किसी वृक्ष तले अथवा आकाश रूपी पंडाल के नीचे बिछा लें। यात्रा की सैर, परिश्रम, व्यायाम तथा प्राकृतिक दृश्य उनकी उदर ज्वाला को उत्तेजित करेंगे और वे एक ऐसे आनंद का उपभोग कर सकें जिसे पाने के लिए राजा महाराजा भी लालायित होंगे। ऐसे अवसर पर माता पिता एवं बच्चे हर प्रकार की चिंता, श्रम और घबराहट से स्वतंत्र रहें। माता पिता अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जावें और जहां तक हो सके अपने बच्चों के लिए प्रत्येक वस्तु आनंदमय बनावें। समस्त दिन मनोरंजन के लिए दिया जावें। ऐसे जनों के लिए जो घर, कारखाने व दुकान में कार्य करते रहते हैं, खुली हवा में किया जाने वाला व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। जो कर सकते हैं उनको इस नियम का पालन करना कर्तव्य जानना चाहिए। हानि तो कुछ नहीं, पर लाभ बहुत कुछ होगा। नए जीवन एवं साहस एवं जोश से परिपूरित होकर वे अपने धंधों में लौटेंगे और रोगों का सामना करने के लिए अधिक तैयार रहेंगे। मैं साधारण गेंद खेलने के व्यायाम के विरुद्ध नहीं, पर कभी कभी इसमें भी अधिकाई हो सकती हैं। इन मनोरंजन के उपरांत जो कुछ भी निश्चित फल होता है उससे मैं घबरा जाती हूं। इन साधनों में जिस धन का व्यय होता है वो मसीह से दूर विनाश की ओर अग्रसर आत्माओं तक सत्य का प्रकाश पहुंचाने में लगाया जा सकता है। धन व्यय और मनोविनोद जो अपने आप को प्रसन्न करने में किया जाता है धीरे धीरे स्वाभिमान की ओर ले जाता है। आनंदोपजन निमित्त खेलों के प्रशिक्षण से लालसा एवं अनुराग का आविर्भाव होता है, जो मसीही चाल चलन को सिद्ध बनाने में सहायक नहीं हो सकता। मस्तिष्क और शरीर के स्फूर्तिवर्धन के लिए पर स्वार्थी आत्मा का प्रोत्साहन, शिक्षक और विद्यार्थियों की एकांगी अभिरुचि का संयोग और उनके मैत्रिक सहयोग में जो समय व बल व्यय किया जावे उसका सौगुणा प्रतिफल मिलेगा। इससे युवकों को चंचल स्फूर्ति के निकास के लिए अच्छा प्रवाह मिलेगा, जिसके अभाव में युवक का जीवन भययुक्त रहता है। बुराई से बचने के लिए मन को भली बातों में व्यस्त रखना कानून एवं अनुशासन के असंख्य प्रतिबंधों से अधिक उत्तम है। संगति और उचित आदतें। युवक जो दूसरों की संगति संपर्क में आते हैं वे अपनी इस संगति को आशीष या अभिशाप बना सकते हैं। वे अपने ज्ञान और स्वभाव द्वारा अपने आचरण को उन्नत बनाकर परस्पर प्रोत्साहन और आशीष प्रदान करके जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं, या असावधान अथवा अविश्वासी होकर वे पतनशील आचरण ही के निमित्त अपना प्रभाव डाल सकते हैं। जितने यीशु पर विश्वास रखते हैं उनका वो सहायक होगा। वे जिनका संबंध मसीह से है उनके जीवन में आनंद है। वे उस मार्ग में पदार्पण करते हैं जिसमें उनका पर टांग देते हैं। इन व्यक्तियों ने अपनी आशा की नेव मसीह पर डाली है। संसार के तूफान उन्हें इस पक्की नेव से डिगाने में असमर्थ होंगे। युवक पुरुष, स्त्रियों, ये आप ही पर निर्भर है कि आप खरे और सच्चे उपयोगी विश्वास योग्य पुरुष बनेंगे या नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में सत्य के लिए स्थिर रहने का संकल्प कीजिए। हमारी अनुचित आदतें हमारे साथ स्वर्ग में नहीं ले जाई जा सकती हैं। यदि हम उन पर यहां विजयी न हों तो वे धर्मियों के निवास स्थान के द्वार हमारे लिए बंद कर देंगी। सामना किए जाने पर हमारी बुरी आदतें विकराल रूप धारण करके हमसे युद्ध करेंगी, पर यदि बल और धीरज के साथ युद्ध चलता रहा तो उन पर विजयी ठीक आदत डालने के लिए हमें सदचरित्र संपन्न व्यक्तियों के धार्मिक प्रभाव एवं संगति में रहना होगा। यदि युवक को पवित्र विचार शील प्रिय संगति में रहने के लिए मनाया जावे तो इसका प्रभाव कल्याणकारी होगा। यदि प्रभु का भय मानने वाले सज्जनों की संगति को अपनाया जावे तो उनका प्रभाव सत्य, कर्तव्य और पवित्रता की ओर पथ प्रदर्शन करेगा। वास्तविक मसीही जीवन भलाई के लिए शक्ति है, पर दूसरी ओर वे जो संदेहात्मक चरित्र वाले मनुष्य स्त्री की संगति रखने वाले जन शीघ्र ही उसी पथ पर पदार्पण करेंगे। स्वाभाविक मनुष्य की प्रवृत्तियां पतन की ओर होती है। अविश्वास की संगति में रहने वाला अविश्वासी हो जावेगा। अधर्म की संगति में रहने वाला निश्चय अधर्म ही बनेगा। दुष्टों की युक्ति पर चलने वाले का पहला कदम पापियों के मार्ग में खड़े होने का और ठट्टा करने हारों की बैठक में बैठने का। सच्चरित्र निर्माण के इच्छुक व्यक्तियों को चाहिए कि ऐसे की संगति खोजें जो गंभीर विचारशील मन वाले धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष हों, जिन्होंने व्यय का मूल्यांकन किया है और अनंत काल का निर्माण करना चाहते हैं। वे अपनी इमारत में ठीक सामान लगावें। यदि वे सड़ी गली लकड़ी चुनें और घटिया चरित्र से संतुष्ट हो जावें तो इमारत का नाश निश्चित है। हर एक सावधान रहें कि कैसा रद्दा रखता है। परीक्षा का तूफान इमारत पर आ लगेगा। यदि इमारत विश्वस्त रूप में दृढ़ न बनाई गई हो तो वो परीक्षा में स्थिर न रह सकेगी। सुनाम कुंदन से बहुमूल्य है। युवक की ये प्रवृत्ति है कि वो निम्न विचार व चरित्र वाले व्यक्तियों की संगति में रहें। निम्न विचार, चरित्र और स्वभाव वाले मनुष्य की संगति में रहकर युवक क्या आशा कर सकता है? कितनों की रुचि निम्न कोटि की है अथवा वे निम्न आदतों से संपन्न हैं? ऐसे जनों के सहवास में रहने वाले उन्हीं का अनुसरण करेंगे। मूर्खतापूर्ण विचार और भोग विलास की खोज में पहला कदम उठाने में कदाचित आपको कोई दृष्टिगोचर न होता हो, कदापि आप सोचते हो कि अवसर आने पर आप अपना मार्ग तुरंत बदल सकेंगे, अथवा जितनी सरलता से आपने भलाई से बुराई की ओर कदम उठाया था उतनी ही सरलता से भलाई से बुराई की ओर लौट सकेंगे। ये तो एक भूल है। दुष्ट संगति में पड़कर कदम ब कदम सद्गुणी मार्ग से अनाज्ञाकारिता एवं भ्रष्टशीलता की गहराइयों में फिसलते हैं, जिसकी उन्होंने आशा न की थी। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम उन सभी वस्तुओं को त्याग दें जिनको रखने से हमें सुख और आनंद प्राप्त हो सकता। उसकी यही इच्छा है कि वे बातें जिनका रखना हमारे आनंद और भलाई के बाधक हैं, हम उनको त्याग दें। संपूर्ण विश्राम और आत्मानंद। युवकों को स्मरण रखना चाहिए कि जो विशेषाधिकार उनके समय का और अपनी योग्यताओं के सदुपयोग का है, उनका लेखा देना पड़ेगा। कदाचित वे पूछें, तो क्या हमारे कोई मनोविनोद नहीं है? क्या हम निरंतर काम ही काम करते रहें? ऐसे शारीरिक श्रम से जिसने शक्ति का अपहरण किया है, थोड़े समय के लिए अवकाश लेना अवश्य है, जिससे परिश्रम में पुनः लगा जावे और सफलता प्राप्त की जावे। पर जहां तक शारीरिक बल का संबंध है, अशेष विश्राम की न तो आवश्यकता ही है, न इसका कोई फलदायी परिणाम होगा। जब एक प्रकार के श्रम से थकान प्रतीत होने लगे, तो बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। वे ऐसे कार्य की खोज करें जो इतना थकाने वाला न हो, परंतु जो माता और बहनों के लिए आशीष का कारण बन सके। वे भारी बोझों के उठाने की चिंताओं में व्यस्त रहती हैं, उनको उठाकर वे उस आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकती हैं जो सिद्धांत पालन से मिलता है। इस प्रकार समय स्वार्थपूर्ण छोटे कामों में व्यस्त रहने में अपव्यय न होगा। उनके समय का उपयोग लाभकारी बातों में होगा और कार्य परिवर्तन से उन्हें ताजगी प्राप्त होगी। उनका समय बहुमूल्य रहेगा जो किसी को अपना सुंदर ब्यौरा देगा। अनेकों का ये दावा है कि स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए स्वार्थी मनोविनोद में लीन होना अनिवार्य है। ये सत्य है कि शरीर की प्रगति के लिए बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन के द्वारा मस्तिष्क और शरीर ताजे होते हैं। पर ये उद्देश्य पूर्ति व्यर्थ विलास में फंसने से नहीं होती, जिनमें वो अपने दैनिक कर्तव्यों को त्याग कर फंसता है। जब हम नकली तथा कृत्रिम का परित्याग करते हैं, जिसमें घुड़दौड़, ताश खेलना, जुआ खेलना, पारितोषिक प्रतिद्वंद्विता, मद्यपान, धूम्रपान सम्मिलित हैं, तो हमें आनंद के उन साधनों की व्यवस्था करनी चाहिए जो शुद्ध, समुन्नत तथा उत्थानात्मक हैं। इनके विपरीत वह दुराचार का केंद्र है। इन मनोरंजन साधनों द्वारा विषैली आदतों और पापमय व्यवहारों का समर्थन किया जाता है। निम्न कोटि के गाने, नीच इशारे और संकेत और मनोवृत्तियां चरित्र को पतन की ओर ले जाती हैं। प्रत्येक युवक जो ऐसे स्थानों में जाने का आदि हो गया है, उसका अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे देश में नाटकशालाओं के सिवा कोई अन्य स्थान ऐसा नहीं है जहां इससे अधिक कल्पना दूषित की जाती हो, धार्मिक मनोवेग पर आघात पहुंचाया जाता हो, अथवा जीवन की गंभीर वास्तविकता अथवा आनंद का परिहरण किया जाता हो। जिस प्रकार मादक पदार्थों के उपयोग से उसकी लिप्सा बढ़ती है, उसी प्रकार नाट्यशाला में जाने की आदत निरंतर बढ़ती जाती है। नाट्यशाला, सर्कस तथा मनोविनोद के संदिग्ध स्थानादि से दूर रहना सुरक्षा का सरल मार्ग है। आधुनिक नाच के प्रेमी परमेश्वर के समक्ष आनंद से प्रेरित होकर दाऊद के आदरमय नृत्य का उदाहरण देकर अपने आप को न्यायसंगत प्रमाणित करना चाहते हैं, परंतु इस प्रकार का वादानुवाद निराधार है। वर्तमान युग में नाच का मूर्खता एवं अर्धरात्रि के मद्यपान से घनिष्ठ संबंध है। आनंद की वेदी पर स्वास्थ्य और चरित्र को आहुति चढ़ाई जाती है। नाच घर में बार बार जाने वाले के हृदय में परमेश्वर के प्रति आदर युक्त नहीं समझा जावेगा। वह जांच निर्णयात्मक है। ऐसे मनोरंजन साधन जिनसे पवित्र वस्तुओं से प्रेम में बाधा हो या परमेश्वर की सेवा के आनंद में रुकावट हो, उनकी खोज मसीही न करें। वाचा के संदूक के स्थानांतर के अवसर पर परमेश्वर की आनंदमय स्तुति निमित्त जो संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ, उसमें और आधुनिक नाच रंग की तुलना नहीं हो सकती। एक से तो परमेश्वर का स्मरण किया गया और उसके पवित्र नाम की महिमा की गई, दूसरी शैतान की ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर को भूलकर उसका निरादर करने लगे। आम तौर पर युवक इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मानो कि दया काल के मूल्यवान घंटे, जब दया विलंब करती है, एक अवकाश काल है, और वे संसार में इसीलिए रखे गए हैं कि भोग विलास में अपनी तृप्ति अथवा रोमांच में व्यस्त रहें। शैतान विशेष रूप से प्रयत्नशील है कि वे सांसारिक विलास और आनंद में लीन होकर अपने आप को यह कहकर निर्दोष ठहरावे कि ये मनोविनोद निर्दोष, भोले और स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं। अनेकों बड़ी अभिरुचि के साथ ऐसे अनैतिक सांसारिक मनोविनोदों में पड़ जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता। इस प्रकार वे परमेश्वर से अपना संबंध विच्छेद करके सांसारिक विलास प्रियजनों के समूह में मिल जाते हैं। वे पाप जिन्होंने प्रलय के पूर्व और मैदान के शहरों का विनाश किया था, आज विद्यमान है, न केवल अन्य जातियों में, न नाम मात्र के मसीहियों में, वरन उनमें भी जो मनुष्य के पुत्र के पुनरागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दृष्टि से परमेश्वर उन पापों को देखता है, उसी से यदि वह आपको दिखलावे तो आप लज्जित और भयभीत हो जावेंगे। रोमांच और मनभाऊ मनोविनोद साधन परमेश्वर के जनों, विशेषकर युवकों के लिए प्रलोभन और फंदे हैं। शैतान प्रलोभन को निरंतर तैयार करता है कि लोगों के मनों की शीघ्र भविष्य में होने वाले दृश्यों के लिए तैयारी करने के गंभीर कार्य से अपनी ओर आकर्षित करे। संसार की संतान की सहायता से वह असावधानों को सांसारिक रंगरलियों में फंसाने के हेतु अपने उत्तेजक साधनों को निरंतर प्रस्तुत करता रहता है। तमाशे, व्याख्यान, नाना प्रकार के मनोविनोद आदि अनेक सामग्रियां हैं जो सांसारिक प्रेम की ओर ले जाती है, और संसार के साथ इस प्रकार के योग से विश्वास निर्बल हो जाता है। संसार का इस योग से विश्वास ढोला पड़ जाता है। विलास खोजी व्यक्ति को परमेश्वर अपना अनुगामी नहीं समझता। केवल वे जो स्वयं त्यागी होकर दीनता और पवित्रता से गंभीर जीवन व्यतीत करते हैं, वे मसीह के सच्चे अनुगामी हैं। ऐसे व्यक्ति अश्लील और थोथे वार्तालाप में फंसकर संसार प्रेमी नहीं हो सकते। यदि आप सचमुच मसीह के हैं, तो आपको उसकी साक्षी देने का अवसर होगा। आपको मनोविनोद के स्थानों में आमंत्रित किया जावेगा, तब वहां आपको मसीह की साक्षी देने का अवसर होगा। यदि आप मसीह के प्रति विश्वस्त हैं, तो आप वहां अनुपस्थित के लिए बहाना करने की कोशिश न करेंगे, पर विनम्र भाव में सफाई से आप घोषित करेंगे कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपके सिद्धांत आपका ऐसे स्थानों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देते। जिस स्थान में हमारा प्रभु आमंत्रित नहीं किया जाता, वहां आप कदापि नहीं जा सकते। मसीह के अनुयायियों के मसीही मनोरंजन के लिए एकत्रित होने और विलास के लिए सांसारिक जमघट में एक भारी भेद होगा। प्रार्थना और मसीह के नाम उच्चारण और पवित्र शब्दों के बदले सांसारिक लोगों के ओठों पर मूर्खतापूर्ण हंसी और हल्का वार्तालाप पाया जावेगा। उनका उद्देश्य साधारणतः रंगरलियों का होता है। उनका मन बहलाव मूर्खता में आरंभ होता और व्यर्थता से समाप्त होता है।